Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschati Desatarine. हरे कृष्णा। तो काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो यहाँ पर आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 8 पर आज चर्चा करेंगे। एक बार मैं दोहराऊंगा, फिर एक बार आप दोहराइएगा। नियतम कुरु कर्मत्वम् कर्म जायायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्येत अकर्मणा। अब इसका अनुवाद पढ़ेंगे साथ में। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं, नियतम कुरु कर्मात्वम। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि भगवान ने इस श्लोक को अर्जुन के प्रथम जो श्लोक पूछा गया इस अध्याय में, तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, जो कि दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक, अगर हम पीछे जाएं तो 50वें श्लोक में क्या चर्चा किए हैं भगवान। यहाँ पर कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। मतलब इसी जीवन के अंदर अच्छे तथा बुरे कार्यों में अपने को मुक्त कर लेता है, भक्ति में संलग्न। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में संलग्न हो जाए तो अपने अच्छे और बुरे कार्यों को यहीं पर समाप्त कर सकता है। तो क्यों समाप्त करने की आवश्यकता है? क्योंकि तीनों ही कार्य बंधन कारक है, अच्छा कर्म भी और बुरा। बुरा कर्म करते हैं तो कहां जाते हैं? नरक में जाते हैं। और अच्छा करते हैं तो स्वर्ग। लेकिन कहते हैं, शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंते, स्वर्ग लोक जाने के बाद भी जब वहां का पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और नरक लोक जाने पर भी नरक लोक से वापस इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तो नरक जाओ या स्वर्ग जाओ, बात तो एक ही है, आना कहाँ पड़ेगा? इस मृत्यु लोक में। इसलिए भक्ति करना उत्तम है, क्योंकि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन के अर्जित अच्छे और बुरे कार्यों को समाप्त कर लेता। ना तो आपको पुण्य मिलेगा, ना ही तो आपको पाप मिलेगा। आपको क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी। और भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है, और भगवान कहते हैं, यत गत्वा न निर्वत्तन्ते तत् धामम परमम मम। मेरे धाम में आने के बाद इस मृत्यु संसार वर्तनी संसार में नहीं आना पड़ेगा, जहां पर बार बार मृत्यु होती है। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में जब इस प्रकार कहा गया, तो अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न पूछा। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणा के कर्मनस्ते मता बुद्धे जनार्दना किम कर्माणि घोर माम नियोज्यासी केशवः। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मतलब ऐसा कर्म जिसका फल मिलने वाला है, उसको सकाम कर्म कहते हैं। मतलब जब हम कोई काम करें और उसमें फल की आकांक्षा करें तो उसे सकाम कर्म कहते हैं। जब हम कर्म तो करें अपनी इच्छा से लेकिन फल की आकांक्षा ना करें, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। लेकिन हम ऐसा कर्म करें ना ही तो कर्म की आसक्ति हो ना ही फल की आसक्ति हो, उसे भक्ति योग कर्म कहा जाता है, कर्म योग कहा जाता है। ऐसा कर्म जो कि ना तो आपको कर्म की आसक्ति है, जैसे मान लीजिए आपको किसी की सेवा है प्रसाद बांटने की, उसको कहा जाए जाओ जूते के स्टैंड पर जाके जूता साफ करो, वो कहेगा ये मेरा काम नहीं है, मुझे मैं तो PhD किया हूँ, है ना, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं ये सब थोड़ी उठाऊंगा, मैं तो डॉक्टर हूँ। तो कर्म के प्रति अगर कोई व्यक्ति आसक्त हो गया तो वो कर्म योग आ जाता है, निष्काम कर्म योग, क्योंकि निष्काम कर्म योग में कर्म में तो आसक्ति है लेकिन फल में आसक्ति नहीं है। और सकाम कर्म होता है जिसमें कर्म में भी आसक्ति है और फल में भी आसक्ति है, और भक्ति योग कर्म है जिसमें ना कर्म में आसक्ति है ना ही फल की आसक्ति है। तो हम लोगों को कौन सा करना चाहिए? भक्ति योग कर्म। आज गीता पढ़ने को बोला जाए तो भी ठीक है, कल बोला जाए अगले मंगलवार को सिर्फ झाड़ू लगानी है, यहाँ का एरिया साफ करेंगे, स्थान शुद्धि करेंगे, तो भी करने में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या काम बता दिया, हम तो प्रवचन सुनने आए थे। तो ये कार्य कहा जाता है भक्ति योग कर्म। तो इसलिए यहाँ पर उसी चीज को और प्रगाढ़ता से समझाते हुए भगवान कह रहे हैं। कई लोग अब इससे घबरा जाते हैं कि कोई भी कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा और फल तो बंधन कारक है, इसलिए क्या करो, बुत बन करके खड़े हो जाओ, कुछ काम मत करो, निष्काम एकदम कोई काम नहीं करो। तो इसलिए भगवान ने पहले श्लोक के पहले चार अक्षरों में कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, निहित रूप से कर्म करो। तो नियत रूप से कर्म करने का मतलब है शास्त्र के अनुसार जो लिखा है वैसा काम करो। अब अर्जुन का क्या शास्त्र कहता है? अर्जुन कौन है? हाँ जी, क्षत्रिय है। तो अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते उनको क्षत्रिय धर्म का काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान सोचता हूँ कि यहाँ से सब कुछ त्याग करके कहाँ चला जाऊं, जंगलों में चला जाऊं और जाकर के तपस्या करूं, मुझसे लड़ाई नहीं होगी, अपने पितामह को मैं नहीं मार सकता हूँ, अपने गुरु को मैं नहीं मार सकता हूँ। तो भगवान ने कहा नियत कर्म करने का मतलब है जो आपका स्वाभाविक कर्म है। अब कई बार ऐसा होता है सर्जन आ जाता है सर्जरी MS करके, पढ़ाई तो कर लिया लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। अब वो क्या करता है, कई मैंने सर्जन ऐसे देखे हैं जो कि खाली मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन तो करते हैं लेकिन सर्जरी नहीं करते हैं, आपने देखे कई सर्जन? तो आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड चेंज कर लिया, मेडिसिन में आ गए, लेकिन उनकी स्टडीज MS होती है, अगर उनकी डिप्लोमा डिग्री देखें MS, लेकिन उसका स्वभाव नहीं था। उसके लोगों ने उसको बढ़ा दिया कि बेट ये कर लो, इसमें ज्यादा कमाई है, ये पढ़ाई कर लो, ये बहुत ही पोजीशन वाली पढ़ाई है। उसने MBBS के बाद MS कर लिया, लेकिन जब सामने कटा हुआ खून देखते हैं तो वॉमिटिंग आ जाती है, तो कहते भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा, किसी की जान से हम नहीं खेल पाएंगे। तो वो व्यक्ति फिर ऑपरेशन छोड़ करके मेडिसिन में आ जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चले जाते। एक मुझे मिले थे MS हैं, आई सर्जन हैं, लेकिन वो अभी मैक्स हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं। तो आप सोचिए जरा क्यों काम बदल लिया, क्योंकि उनके स्वभाव के अनुसार वो काम नहीं था। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं नियत कर्म करो, इसका मतलब है जो तुम्हारा स्वभाव है वैसा कर्म करो। मेरा अपना निजी अनुभव है, जब मैं कॉरपोरेट में काम करता था तो रात दिन ऑफिस में बहुत सैलरी हाई पैकेज में हम जॉब करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, इंटरनेशनली ट्रैवल भी कर रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता था मेरा मनुष्य शरीर इसलिए नहीं बनाया कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊं या फिर ये कंप्यूटर्स में अपना सिर घुमाता रहूं। क्योंकि जन्म हुआ एक ऐसे हिंदू ब्राह्मण परिवार में जहां पर इच्छा है कि भगवान के बारे में जाने और भगवान के बारे में बताएं। अब प्रेम तो है लेकिन समय नहीं है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है ये प्रोत्साहन देते हैं उस व्यक्ति को, जैसा उसका नियत है, स्वभाव है नियतम, वैसा कर्म करना चाहिए। तो लोग आजकल देखा जाए तो शास्त्र कहते हैं कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र हैं, क्योंकि चाहे ब्राह्मण लिखते हो सरनेम में, चाहे क्षत्रिय लिखते हो, चाहे वैश्य लिखते हो, सिर्फ लेकिन आज का एक ही टारगेट है नोट कमाना, और नोट से आगे जाता है वोट कमाना, है ना। नोट और वोट के चक्कर में सारा संसार अटक गया है। परंतु अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा जन्म ब्राह्मण में, मैं ब्राह्मण हूं, और अगर उसका स्वभाव भी ब्राह्मण का है, तो उसे ब्राह्मण के कर्तव्य करने चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ाना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय अनुसार कार्य करना चाहिए, उसको जाना चाहिए फौज में, उसको बिजनेस नहीं लगाना चाहिए। अब कई बार देखते क्षत्रिय बिजनेस लगा के बैठा है, लेकिन उस अगर क्षत्रिय है और उसमें क्षत्रिय के गुण का स्वभाव भी है तो उसको क्षत्रिय कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए ऐसा। तो उसमें बताया गया कैसा होना चाहिए, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के कर्म है और उसमें उसके गुण बताए गए हैं, वीरता, पहला गुण है वीरता। अब अर्जुन तो वीर थे कि नहीं थे, तो अर्जुन को भजन करना अच्छा लगेगा पेड़ के नीचे बैठकर साधु बनना, कह रहे तुम तो वीर हो, वीरता। दूसरा तेजो, तुम्हारा तेज, स्वयं तुम सूर्य पुत्र हो, सूर्य से प्रकट हुए हो, तो तुम तो मतलब इंद्र जैसा तुम्हारा तेज है, इंद्र के पुत्र हो, और सूर्य का पुत्र तो कर्ण है, इंद्र के पुत्र हो, तुम्हारा तेज इतना है और तुम पेड़ के नीचे बैठ के जप करोगे खाली। धृति, संकल्प, जो तुम संकल्प कर लेते हो उसे तुम पूर्ण करते हो। दाक्ष्यम, तुम्हारी दक्षता है। जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और अर्जुन से पूछा कि बताओ तुमको पेड़ पर क्या दिखता है, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी 13 वर्ष की उम्र में, तो दुर्योधन कहता है गुरुदेव मुझे पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया दिखाई देती है। अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिखता है, कहा मुझे हरे पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया दिखती है और चिड़िया की आंख भी दिखती है। और इसीलिए जब द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं तो सभी लोग ध्यान पूर्वक उस मछली की आंख में जो कि ऊपर लगी थी और उसकी परछाई नीचे तेल में भरे एक तालाब में दिखाई दे रही थी, देखना था परछाई में और मछली की, घूमती हुई मछली की आंख में तीर भेदना था जिससे द्रौपदी का स्वयंवर पूर्ण होना था। है इतनी दक्षता किसी में। अर्जुन आए, उससे पहले सभी ने प्रयास किया, कोई मछली की पूंछ पे लगाता था, मतलब पीछे के हिस्से में, कोई मछली की पीठ पे लगा रहा था, लेकिन उस मछली की आंख को कोई भेद नहीं पा रहा था। लेकिन उस घूमती हुई मछली को नीचे देख करके अर्जुन ने बाण ऊपर लेकर के छोड़ दिया और सीधा आंख भेद दिया। तो भगवान उसे याद दिला रहे हैं, अर्जुन तुमने तो द्रौपदी के स्वयंवर में एक तीर से आंख को भेद दिया था, ऐसी दक्षता वाला अर्जुन युद्ध छोड़ करके जाएगा पेड़ के नीचे जप करेगा बैठ के। ब्राह्मण का स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है। युद्ध चा अपलायनम, उसे युद्ध से अपलायन नहीं होना चाहिए, विमुख नहीं होना चाहिए, ये क्षत्रिय का गुण। एक बार ऐसे ही एक भक्त बता रहे थे, वो पहले इंडियन नहीं थे, मतलब इंटरनेशनल भक्त है, वियतनाम, आपने सुना वियतनाम, वियतनाम में वो स्टूडेंट थे, मतलब 18 वर्ष के थे, तो उनको एक लड़ाई के लिए, उस टाइम वियतनाम वॉर चल रहा था, इमरजेंसी निकला, तो जितने भी लोगों 12वीं पास थे उन सभी को जबरदस्ती इंडियन, मतलब उस वियतनाम आर्मी में भर दिया गया। अब इनको भी वियतनाम आर्मी में भर दिया, लेकिन इनका स्वभाव लड़ाई का नहीं था, लेकिन सरकार चाहती थी हर 18 साल से ऊपर का बच्चा जाए आर्मी में और अपने वियतनाम कंट्री की रक्षा करे। सबको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद सबको वॉर पे भेजा गया। अब इन्होंने ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन जब वॉर पे गए तो सामने से जैसे फायर शुरू हुआ, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, बोले ये तो गोली मुझे लगेगी आकर के। तो अब ये एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखने लगे, पेड़ से लेकर के चीफ कमांडिंग ऑफिसर के जो बैरक है वहां से वहां तक जाने के लिए क्या करूं, क्योंकि बीच में रास्ते में गोलियां चल रही है, बारूद फट रहा है, ये तो घबराए हुए थे बुरी तरह से। तो इन्होंने देखा कि एक लेफ्टिनेंट इनके साथ का थोड़ा सा सीनियर था कमोडोर, वो वहीं पर पड़ा हुआ है, मर गया है ऐसा लग रहा था, उसको गोलियां लगी हैं। तो इन्होंने उसकी ढाल बना ली, उठा लिया और उसको ढाल बना के कमांडिंग ऑफिसर के बैरक तक पहुंच गए, और रास्ते में गोलियां और चली, उसकी और पैर में लगी, यहां लगी, जूते पे लगी, सब लग चली रही थी लगातार, ये भागते हुए आया उसको लेकर और लाकर के रख दिया अंदर और बैठ गए। तो कुछ बताया नहीं किसी को कि मेरी मानसिक दशा क्या है। चीफ कमांडिंग ऑफिसर को लगा एक वैसा वीर आया है कि एक गोली लगी थी उस व्यक्ति को बचा करके अंदर तक बैरक तक लाया, तेरे जैसा वीर तो कोई है ही नहीं। तो वियतनाम वार वालों ने, वियतनाम आर्मी ने उस वार के बाद में सभी फौजियों को अवार्ड दिए। तो इनको ऐसा अवार्ड दिया, अशोक चक्र जैसे हमारे यहाँ है ना, परमवीर चक्र, ऐसा एक इम्पोर्टेंट चक्र अवार्ड दिया कि इनकी वीरता की गुणगान गाए जाए। अब वो बोल रहे थे भैया बताते बाद में, वो फौज छोड़ के जब भक्त बने कहते मैं ही जानता था क्या वीरता थी मेरे अंदर, मेरा पांव कांपता था गोली चलने पर, लेकिन मैं अपनी रक्षा कर रहा था और कमांडिंग ऑफिसर को लगा मैंने उस व्यक्ति की रक्षा करी है और वो बच गया। बाद में उसने बड़ा धन्यवाद दिया कि तुम मुझे उठा लाए, वरना कोई बम पड़ता तो मेरी धज्जियां उड़ जाती, तुम मेरे को उठाकर अंदर तक ले, तुम महान हो। लेकिन बाद में वो छोड़ करके भक्त बने तो बोले हाँ ये मेरा कर्म है, गीता पढ़ना, पढ़ाना, प्रचार करना, माला जपना, ये अच्छा लग रहा है। वियतनाम का फॉरेनर भक्त, लेकिन स्वभाव हिंदुस्तानी शास्त्रिक ब्राह्मण का स्वभाव। ये नहीं कि ब्राह्मण इंडिया में उगता है, ब्राह्मण किसी भी जगह आ सकता है, अमेरिका में भी है, सिडनी में भी है। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर आदमी ब्राह्मण है, यहाँ पर भी शूद्र भी हैं, वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है। तो अर्जुन को भगवान याद दिला रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। आगे कहते हैं जायो ही अकर्मणा, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा जॉब, ना मजा नहीं आ रहा जॉब में, मुझे लगता है ये मेरे स्वभाव का नौकरी नहीं है, तो एक काम करता हूँ छोड़कर घर बैठ जाता हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ, वीआरएस ले लेता हूँ। लेकिन वीआरएस लेकर के खाली बैठना तो भगवान मना नहीं कर, बना भगवान नहीं तो कहा नहीं कि जो कर्म नहीं करेगा उसको मैं भगवत धाम ले जाऊंगा, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। भगवान कह रहे कर्म ना करने की अपेक्षा जो भी कर रहे हो कम से कम वो तो करते रहो। पहले तो कहा जो करो जो तुम्हारे स्वभाव का हो, दूसरा कहा कि कुछ कर रहे हो तो ठीक है, कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है ना। क्योंकि आगे कहते हैं शरीर यात्रा अपी चते, जो ये शरीर की यात्रा है, न प्रसिद्धति अकर्मणा, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर शरीर का निर्वाह करना है, इसको कुछ रोटी पानी डालना है, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। पर वो सेकंड कैटेगरी है, शरीर पालन करने के लिए नौकरी करना ये सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट क्या है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना। तो आपने देखा होगा कई बार कई लोगों को नौकरी के बाद में नौकरी करते वक्त छुट्टी की आकांक्षा ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, स्वभाव हमारा स्वभाव नहीं। और कई लोग होते हैं छुट्टी आती तो कहते हैं अरे यार छुट्टी क्यों आ गई, छुट्टी में काम कर लेंगे, ओवरटाइम ले लेंगे, एक्स्ट्रा डे ले लेंगे, काहे को अपनी छुट्टी खराब करें। उनको उनका स्वभाव काम करने का है। एक व्यक्ति जिसको छुट्टी अच्छी लग रही उसका स्वभाव काम करने का नहीं, इसलिए वो सोचा है छुट्टी मिले तो रेस्ट कर लूं। लेकिन वो अपने काम से थक क्यों गया, क्योंकि उसका काम उसके स्वभाव का नहीं। अब हम जब जॉब करते थे तो कार्य नौकरी करते वक्त सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 12-12 घंटे, कभी कभी रात को 10 बजे तक काम करते थे, तो यही लगता था घर कब जाएंगे। लेकिन आज छोड़ करके इसलिए आए थे मंदिर में कि आराम से बैठेंगे। तो आज सुबह उठते हैं 4 बजे 4:30 मंगला आरती होती है, उसके बाद 9 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, भागवत होती है, उसके बाद में 9:30 बजे प्रसाद होता है, 10:30 बजे तक सब अपने अपनी सेवा में जाते हैं, प्रचार कार्य में, जैसे मैं अब 10:30 बजे निकल के फिर यहाँ आ गया 1 बजे, अब यहाँ 2:30 बजे तक यहाँ प्रचार चलेगा, उसके बाद 2:30 बजे के बाद मीटिंग करने जाएंगे, फिर प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर शाम की 6 बजे आरती होगी, फिर संध्या आरती होगी, फिर गीता क्लास होगी, 9 बज जाएंगे, फिर भी ये लगता है अच्छा मंदिर बंद हो गया, पट बंद हो गए, चलो अब कुछ नहीं तो घर चलते हैं क्योंकि सुबह फिर आना है। लेकिन ये मन नहीं होता कि बस 6 बजे निकल जाएं, छोड़ो भगवान का दर्शन, घर जाएंगे। क्यों थकान नहीं होती है, क्योंकि काम स्वभाव के अनुसार है। और हम सब का स्वभाव है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान के दास बनने में थकान नहीं होती है। अगर आपकी नौकरी ना हो तो यहाँ पर कथा सुनने में जिसको आनंद आता होगा ना, वो कहेगा नौकरी जाए, मैं तो भैया कथा सुनूंगा 8 घंटे चले या 9 घंटे चले। लेकिन जिसका स्वभाव नहीं होगा, वो अपने शरीर जो आत्मा स्वरूप में होगा उसको तो कथा में रुचि होगी, जो शरीर का अभी सोचता होगा मैं शरीर हूं उसको कथा में आनंद नहीं आएगा, वो तो घड़ी देखेगा बार बार कि कब समाप्त हो, प्रसाद पाऊं और अपने काम पे जाऊं, मैंने अपना कर्म कर दिया, प्रवचन में आके बैठा, कुछ तो फायदा होगा, लेकिन उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अभी शरीर के धर्म पर है। शरीर का धर्म है, शरीर मतलब होता है जो सरकता रहता है, सरकता रहता है मतलब धीरे धीरे घिसटता रहता है, शरीर मतलब घिसटने वाला शरीर। तो घिसटता कहाँ है, कथा से गेट की तरफ घिसटता है, और फिर धीरे धीरे गेट से मृत्यु की तरफ घिसटता है, वो शरीर है। और आत्मा कभी घिसटती नहीं है, आत्मा सदा आनंद में रहती है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। जैसे भगवान है सच्चिदानंद, ऐसे आत्मा भी है सच्चिदानंद। तो इसलिए हमको ऐसा काम करना है जिस काम से हमें आनंद आए। आज ज्यादा से ज्यादा लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ करो जिससे मेरी इंद्रियों की तृप्ति हो। तो पांच इंद्रियां विशेषकर हमारी हैं जिससे हमें ज्ञान अर्जित होता है, और पांच हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं। तो बता सकते हैं आप पांच ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, कान, जिह्वा, त्वचा और कान नाक। कान, नाक, आंख, जिह्वा, त्वचा, पांच ज्ञान इंद्रियां। पांच कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, हाथ पैर हाँ, मुंह और मल, इत्र, मल और मूत्र निकालने के हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हम कर्म करते हैं। तो आप ये देखिए कि इन पांच और ये पांच मिलाकर के दस, इनसे हमारी इतनी आसक्ति होती है कि हम गो स्वामी बनने की बजाय गोदास बन जाते हैं। आंख कहती है पिक्चर देखनी है, नई पिक्चर आई है दंगल, तो आंख खींच के ले जाएगी टिकट काउंटर तक खरीदने के लिए। आप थोड़ी ले जा रहे हो, आपको लगता है मेरी आंखों ने देखा, एक्चुअली वो नहीं है, आपकी जो आईज हैं दे आर ड्रैगिंग यू टूवर्ड्स दैट मूवी, वो आपको मूवी तक ले जा रही है, आप मूवी तक आंखों को नहीं ले जा रहे हो। अच्छा, किसी की बुराई सुनने को मिल जाए, आपके किसी बॉस की बुराई हो रही हो कहीं पर, कान अपने आप खींचे चले जाते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता कि इधर इधर लाओ। जैसे यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं तत् श्रुणु, अर्जुन सुनो, बोलना नहीं पड़ेगा, अगर बुराई सुनाई देना तो आदमी खुद ही पूछता, अच्छा अच्छा क्या क्या किसके साथ क्या हुआ क्या हुआ, तो बता दे, अरे अरे तुम्हें नहीं पता, अरे उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा हमें नहीं पता था, बड़ा हाँ लगता ऐसा ही था, तब तीसरा आ जाएगा, अरे क्या हुआ क्या हुआ, और पूरा लंच टाइम निकल जाएगा इसी चर्चा में। कान हमें खींच के ले जाते हैं उसे, नाक हमें खींच के ले जाती है जहां सुगंध हो, दुर्गंध से हम दूर भागते हैं और सुगंध से हम खींचे चले जाते हैं। इसीलिए आज हिंदुस्तान में अमेरिका और पेरिस और यूरोप के प्रोडक्ट बड़े बिकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी को या कोई पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, ह्यूमन जो इंसान है उसकी नाक की जो इंद्रिय है, सूंघने की जो शक्ति, उसको खींच ले जाती है। आप देखो कि आज इंडिया में इंपोर्टेड परफ्यूम चलते हैं, क्यों चलते पता है? इसलिए चलते हैं क्योंकि पेरिस के जो लोग थे उन्होंने परफ्यूम को बनाया था अपनी निजी जरूरत के कारण। वहां पे लोग 7-7 दिन तक नहाते नहीं, 7 दिन होने के बाद में भी सोचते हैं आज नहाए, वीकेंड हो गया, ठंड इतनी होती है कि नहाने के -40 डिग्री टेम्परेचर में कौन नहाएगा, तो परफ्यूम लगा करके। इसीलिए वो लोग गोरे भी रहते हैं, सुंदर भी दिखते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी नहीं है, और परफ्यूम लगा करके काम चलाते हैं। और इसीलिए उनका इन्वेंशन है, बोलते हैं इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, जरूरत की माता कौन है? इन्वेंशन। इन्वेंशन है वहां पर, आविष्कार वहीं होता है जहां पर जरूरत होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जरूरत है क्या? 3-3 बार पसीना बह रहा है, नहा रहे हैं, है ना, वो व्यक्ति को काहे की जरूरत है परफ्यूम लगाने की? वो इसलिए लगा रहा है जब मैं पार्टी में जाऊं और फिर मैं डिओड्रेंट लगाऊं और मैं परफ्यूम लगाऊं तो दुनिया वालों की नाक खींची चली आए मेरी तरफ और मैं ही दिखूं, आहा हा हा कितना सुगंध आ रहा है। तो ये इंद्रिय खींची चली जा रही है। जिह्वा, हमारी जिह्वा खींची चली जाती है ऐसे पदार्थों को खाने के लिए जिनको शास्त्र में वर्जित किया गया। शास्त्र कहते हैं लहसुन प्याज मांसाहार का हिस्सा है, नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज खाने से हमारी भक्ति समाप्त हो जाएगी। जैसे गाना गाने वाला व्यक्ति जानता है कि गाना गाने के लिए अचार खाना हानिकारक है, ठंडा पानी पीना हानिकारक है, ऐसे ही एक भक्त के लिए सुबह उठ करके जप करना और भक्ति में अपने को बनाए रखने के लिए लहसुन प्याज बिल्कुल ही खराब चीज है। आप कहेंगे कैसे? साइंस की विधि भी देखेंगे तब भी खराब है, शास्त्र की विधि देखेंगे तब भी खराब है, और व्यवहारिक दृष्टि देखेंगे तब भी खराब है। व्यवहारिक दृष्टि से खराब है क्योंकि जब आप प्याज खाते हैं तो उस सब्जी का स्वाद समाप्त हो जाता है, गोभी वाला स्वाद आएगा ही नहीं कभी, टमाटर का स्वाद आएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही स्वाद आएगा सब्जी में, किसका?
प्याज।
इसीलिए प्याज खाने वाले व्यक्ति को कोई भी सब्जी दो बिना प्याज की, उसकी एक ही इच्छा होती है, सब्जी में स्वाद नहीं थोड़ा प्याज डाल दो, क्योंकि सब्जी का स्वाद तो उसने जीवन में चखा ही नहीं। भगवान कहते हैं कि जितनी भी सब्जियां हैं वेजिटेशन, इसके अंदर जितना भी रस है वो मैं हूं। अब हमने भगवान को देखा नहीं, क्योंकि भगवान के रस जो है सब्जी का स्वाद वो तो प्याज के द्वारा मारा गया है। प्याज खाने वाला, लहसुन खाने वाला व्यक्ति सब्जी के रस का कभी अनुभव ही नहीं करता। और ऐसे लोगों का अनुभव हम सुनते हैं जो इस कॉन में जब ज्वाइन करते हैं और कुछ महीनों बाद वो कहते हैं, प्रभु जी मैंने अपने जीवन में पहली बार टमाटर खाया है, पहली बार, आज तक तो मैं अपने घर में सिर्फ प्याज ही खाता था, प्याज हटता है तो टमाटर सामने उगत निकल के आता है उसका रस। लोगों का बस चले तो प्याज वो मिठाई में भी डाल करके खा जाए, इतना प्याज से आ सकती है। ये व्यवहारिक दृष्टि से, और वो व्यक्ति व्यवहार दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से देखें तो अगर कोई व्यक्ति प्याज खाकर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने प्याज खाने की आदत नहीं है, तो बस सामने वाला कहेगा हरे कृष्णा, भैया बहुत देर हो गई बात करते करते, अब जाओ, है ना। उसके मुंह खोलते ही सारा प्याज समारोह शुरू हो जाएगा, सुगंध आएगी। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर से जब गर्मी में पसीना निकलता है तो भी उसको परफ्यूम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसने अपने स्वाद के लिए प्याज को खाया, लहसुन को खाया। आप देखिए ये आदत होती है, मेरा पुत्र है तो बचपन से उसने खाया है नहीं, क्योंकि इस घर में पढ़ रहा, हमने भी नहीं खाया था कभी अपने बचपन में। तो जब खाया नहीं तो एक दिन उसको ऐसे उसके टीचर के पास लेके गए, ड्राइंग टीचर के पास। तो जब लेके गए तो उनकी पत्नी जो थी टीचर की, वो बना रही थी सब्जी प्याज और लहसुन की। तो उन्होंने वो तड़का डाल करके पूरा फ्राई पैन में डाल के डाला ना, तो मैंने फीस दे दिया था कुछ 800 रुपीज़, ड्राइंग का कुछ फीस था 800 या 900, मैंने फीस दे दिया था। और फीस देने के बाद में मैंने कहा एक महीना ये आएगा आपसे ड्राइंग सीखेगा, आर्ट सीखेगा, और इसको सिर्फ कृष्ण ड्राइंग सिखाइएगा, बलराम, मैंने उनको पूरा बुक भी दिया था, ये ड्राइंग सिखाया, वो बड़े एक्सपर्ट ड्राइंग मास्टर है। लेकिन प्याज का वो जब तड़का लगा ना, ये वहां से भाग आया, कहता है मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, वहां पर तो मेरे से सांस नहीं ली जा रही है, छोड़ के चला है। तो ये स्वभाव है उसका बचपन से, है ना। तो हम जब प्याज लहसुन खाते हैं तो एक आवरण आ जाता है, हम समझ ही नहीं पाते हम क्या हैं। और अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो प्याज या लहसुन खाने वाला व्यक्ति एक, उसके अंदर प्याज के अंदर बताया गया एफोडेसिक होता है। एफोडेसिक समझते हैं, काम वासना जो है उसको बढ़ाने की शक्ति होती है प्याज में, तामसिक विभोजन है। और काम वासना जब बढ़ती है तो एक शास्त्र है काम शास्त्र ना, उन शास्त्रों में प्याज और लहसुन को बड़ा ही महत्व दिया गया है। उसका कारण है उसमें, क्योंकि वो काम शास्त्र है। लेकिन भक्ति मार्ग में लाने वाले व्यक्ति को सबसे पहली चीज 6 अनर्थों में से छोड़नी होती है, वो काम ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, मतलब जलन, ये भावना छोड़ने उसका पहली शुरुआत ही काम वासना से, काम से, इच्छा से है। लेकिन इसको बढ़ चढ़कर बढ़ा देता है प्याज, उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे छोला बनाने में खान सोडा डालते हैं ना, सोडा डालने से खाना सोडा डालने से छोले का पकना और स्ट्रांग होता है। ऐसे ही हमारा भौतिक संसार में लिप्तता करने में प्याज अग्रसर करता है हम। और अगर हम भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो ये चीजें हमें त्यागनी ही पड़ेंगे। बताते हैं असत शास्त्रेन, जो ये पेड़ है इस संसार का, जो ये वृक्ष आपको दिखता है ना, ये भौतिक संसार का जो वृक्ष है ये एक्चुअल वृक्ष नहीं है, ये नकली वृक्ष है। इसका असली वृक्ष तो कहां है? आध्यात्मिक जगत में। यहां पर है ऊर्ध्व मूलम, मूल जो है जड़ ऊर्ध्व ऊपर की तरफ है, अधो शाखाम, शाखाएं नीचे की तरफ, अधो शाखाम ऊर्ध्व मूलम। अब आप देखो कि ऐसे पेड़ है और परछाई में कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। तो भगवान के धाम में ये पेड़ है ऐसा, और नीचे कैसा है? उल्टा, अधो शाखाम ऊर्ध्व मूलम, जड़ ऊपर है। अब क्या है कि जब कोई परछाई नीचे पड़ती है तो परछाई पूरी पूरी नहीं दिखती है, आंखें नहीं दिखेंगी, नाक नहीं दिखेगी, मुंह नहीं दिखेगा, स्वभाव नहीं दिखेगा, उस चीज की ब्रांड नहीं पता चलेगा या फिर हम होंगे तो हमारे वस्त्र का कलर नहीं दिखेगा, सिर्फ काले रंग का एक आवरण बन जाएगा। तो भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की सिर्फ एक विकृत परछाई है, पूरा पूरा नहीं है। आदमी बोलता है उसकी परछाई, जैसा वो वैसा ही है, नहीं, वो उसकी खाली विकृत। आप अपनी परछाई को देखें तो आपको पता चलेगा ना मेरे कपड़े का रंग है, ना मेरे शरीर का रंग है कि मैं गोरा हूं कि काला हूं। बस चाहे गोरा हो काला हो, सबका काला ही शेडो पड़ता है। तो ये संसार विकृत है। ऐसी एक बार एक रानी थी, उनके पास में एक 9 लक्का हार था। वो हार उतार करके दूसरा हार पहनना चाह रही थी, इतने में एक पक्षी आया और उसके हाथ से वो हार उठा करके ले गया। ले जाकर के उसने पक्षी ने पेड़ पर बैठ करके उस हार को छोड़ दिया, क्योंकि वो चमक रहा था तो उसको लगा खाने की चीज है, परंतु बाद में लगा ये तो खाने योग्य नहीं है, पेड़ पर छोड़कर ही चला गया। जब पक्षी वहां छोड़कर चला गया तो रानी ने ऐलान करा, 9 लक्का हार है, जो भी इसे ढूंढ लाएगा 1 लाख उसको दे दूंगी, लेकिन वो 9 लाखा हार मुझे चाहिए। तो गांव के सभी लोग ढूंढने निकले, कहां है कहां है। तो एक व्यक्ति को नीचे कीचड़ थी, उस कीचड़ में सोने का हार पड़ा हुआ दिखा। उसने कहा हाँ, पक्षी ने लाके यहाँ छोड़ दिया है, और उसने कीचड़ में कूद मार दी। और कूद में ऐसे कीचड़ में करता जा रहा है पूरा कीचड़ में, कभी इधर जाए फिर लगे नहीं इधर है, फिर इधर जाए, पूरा लिप्त हो गया वो कीचड़ ही कीचड़, चारों तरफ मुंह आंख नाक कान पैर सब कीचड़ में। वहां से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने कहा भाई कीचड़ में क्यों नहा रहे हो, आज क्या है, 2 घंटे से देख रहा हूं कीचड़ में ही नहा रहे हो। कहा मैं रानी का हार ढूंढ रहा हूं, मुझे दिखता है जब मैं हाथ मारता हूं तो गुम हो जाता है, लगता है उधर है फिर उधर है, तो कहां है हार, मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैं कीचड़ में कूद रहा हूं। तो साधु ने कहा मूर्ख व्यक्ति, हार तो पेड़ पर लटका हुआ है, उसकी परछाई कीचड़ में पड़ रही है। ऐसे ही इस संसार की खुशी जो हमें दिखती है, जिसके लिए हम कीचड़ रूपी भौतिक संसार में उतर गए हैं, उसमें सुख नहीं है। सुख कहां है, ऊपर भगवान के नाम में, उसकी विकृत परछाई पड़ रही है। तो हमको लग रहा है अरे अरे बस एक प्रमोशन हो जाए फिर घर सुखी संपन्न, एक बार VRS का पैसा आ जाए ना तो बस उसके बाद में जीवन आनंद में गुजरेगा, एक बार स्कूटर के बाद में कार आ जाए ना तो बस इसको ऑफिस तो मेट्रो से जाया करूंगा पर वीकेंड पे शनिवार इतवार को बच्चों को गाड़ी से घुमाने चिड़ियाघर और इंडिया गेट ले जाऊंगा। कितना भी घुमा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। आप वो करो क्योंकि वो आपका नियमित कर्म है, बच्चों को देख रेख करना, उनको घुमाना, वो ठीक है, लेकिन भगवान को भूल करके करना ये ठीक नहीं है। क्योंकि जानना चाहिए सुख का मूल है ऊपर, ये तो है ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम। 15वें अध्याय भगवद गीता में आप पढ़ेंगे इसके और विस्तृत वर्णन के बारे में। तो हमें समझना है कि हमको अपना नियत कर्म नहीं छोड़ना है। और हम लहसुन प्याज के बारे में बता रहे थे, तो शास्त्र विधि भी कहती है कि एक बार राहु केतु नामक राक्षस को जब मारा गया, कुछ शास्त्र में इस तरह वर्णन है, तो उनकी हड्डी जहां गिरी वहां से लहसुन बन गया, और खून के बूंद जहां गिरी वहां पर प्याज बन गया। इसलिए प्याज लाल रंग का था और हड्डी से लहसुन सफेद रंग का था। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार एक ऋषि ने गाय को यज्ञ में आहुति देने के लिए बुलाया, क्योंकि पहले ऐसी आहुति दी जाती थी कि गाय जो बुजुर्ग हो गई उसको यज्ञ में आहुति दो। गौ यज्ञ करके गौ मेधा यज्ञ होते थे, और उसके बाद में उस गाय को नया शरीर प्रदान करके उसकी यात्रा पूर्ण करो, और एक तुरंत ही एक नया बछड़ा निकल आता था अग्नि में से बाहर, तब वो उनको शक्ति होती थी कि हाँ इस गाय को अग्नि में प्रवेश कराओ और इसका जो नया शरीर में आत्मा को प्रवेश कराओ, ये यज्ञ होता था। अब लोगों ने कहा आप ही के शास्त्रों में लिखा है मांस खाने में कोई बुराई नहीं है, मांस खाना थोड़ी है, और उस को लेकर के लोगों ने अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए कभी मुर्गे को मारना कभी बकरी को मारना प्रारंभ किया। आप नहीं जानते हैं कि एक मच्छर को भी मारने के बाद में उसके कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है। आज आप जिस मच्छर की 2 टांगड़ी तोड़ देते हैं सोच करके ए मार दिया मैंने क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन कुछ वो अभी नहीं बिगाड़ेगा, आपने उसकी जीवन की प्रक्रिया को आधे में रोक दिया। अब वो अपना बदला लेने के लिए, पिक्चर होती तो आपको समझ में आए, पिक्चर में होता है ना सांप बदला लेने के लिए आता है, वैसे ही वो मच्छर इंसान बन के आता है ना, और आप मच्छर बनते हैं। कभी मच्छर ना बने तो हो सकता है बहू की सास बन के मच्छर आ जाए, है ना। और फिर वो कहता है मेरी सास मेरा खून पीती है, कहा तूने मेरे को मारा था ना, अब ले तू। तो ऐसे करके भी मच्छर को, वो तो विधाता बताएगा कि कौन सा कर्म कैसे निकलेगा, लेकिन हर कर्म का आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान बार बार कह रहे अर्जुन नियत कर्म कुरुत्वम, अपने नियत कर्म करो। तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तुम्हारी लड़ने की आदत है, तुम तेज हो, तुम वीर हो, छोटी छोटी बात पे तुम्हें गुस्सा आता है। तुम साधु बनने का ड्रामा मत करो। तुम साधु बनकर पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहे हो कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तो तुम मेरे कहने को काट करके पहली चीज तो मुझे खुश नहीं करोगे। दूसरा, अगर तुम यहां से चले भी जाओगे ये सोच के मेरे परिवार वाले हैं, तो इनकी तो मृत्यु हो ही चुकी है, क्योंकि आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होने वाली है। और तीसरा कि जब तुम बाहर जाके लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा है, कोई बोलेगा भगोड़ा अपलायनम, है ना, भाग करके आ गया। भागना अपलायन मतलब भागना नहीं चाहिए था, पलायनम मतलब तू भाग कर आ गया, तो लोग तुझे पलायनम भगोड़ा कहेंगे, तो गुस्सा आएगा, फिर तुम धनुष चलाओगे, अपना गांडीव चलाओगे, वो व्यक्ति मारा जाएगा, तो एक व्यक्ति के मारने का भी क्या लग जाएगा, पाप लगेगा, क्योंकि वहां मेरे कहे बिना तुम मारोगे। लेकिन यहां तुम 1 अरब सेना को मार दो अर्जुन, एक का भी तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यहां जिसको भी मारोगे मेरे कहने पर। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो लोग बोलते हैं अरे आपने अपने घर परिवार को सबको छोड़ दिया, आपकी ड्यूटी नहीं बनती है परिवार को देखरेख करना। अरे उसने जो भी किया है वो अपने गुरु के आज्ञा पे किया है, गुरु के आदेश पे किया है, गुरु के निरीक्षण में किया है। आप कौन होते हैं उसको गाइड करने वाले, उसके जीवन का निर्वाह करने वाला कौन है, ऊपर वाला, सबका ऊपर वाला निर्वाह करने वाला है। लेकिन अहंकार में आकर के व्यक्ति को लगता है करने वाला तो मैं हूं, और इसी के कारण वो बंधता चला जाता है इस संसार में, ऐसा बंध जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है उसका। तो हम कर्म करने वाले हम नहीं है, वो है ऊपर वाला। आप देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास जिसमें आप देख सकते हैं बिना कर्म किए भी व्यक्ति को खाना पीना मिल जाता है। कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यो कहे सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? बड़े से बड़ा मर्सिडीज में बैठ के, ऑडी में बैठ के भी आदमी मंदिर जाएगा ना तो भगवान के सामने जाकर के क्या करेगा, हाथ फैलाएगा। इसीलिए कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अभी भिखारी बाहर नहीं होता है, अंदर भी होता है। एक भिखारी बाहर होता है, एक अंदर होता है। अंदर वाला भिखारी भगवान से मांगता है, बाहर वाला अंदर से बाहर आने वाले से मांगता है। पर भिखारी दोनों स्टैंडर्ड अलग अलग है, पर भिखारी है दोनों, क्योंकि पूरा जीवन मांग ही रहे, है ना। तो ये जो दास मलूक है ये ऐसे दास मलूक नहीं बन गए। दास मलूक ने नियत कर्म कुरु का जो ये श्लोक है इसके ऊपर ही वो दास मलूक बन गए। मलूक दास के जीवन का चरित्र आता है। इसी एक बार वो एम्स में कथा सुनने आए होंगे, मतलब ऐसी कभी कथा सुनी होगी कहीं पर, जहां राम के चरित्र का वर्णन किया जा रहा था कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देने वाले राम हैं, कृष्ण हैं, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, करने वाला वो है। तुम तो सिर्फ एक निमित मात्रे न भव सव्यसाची है अर्जुन, तुम तो खाली निमित हो। इसी हम सब निमित है अपने कर्म के। डॉक्टर सोचे मेरे इंजेक्शन ने किसी की जान बचा ली तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, शास्त्र कहते हैं। इंजेक्शन अगर जान बचा सकता है तो जो मर जाता है उसमें इंजेक्शन लगा के उसको बचाते क्यों नहीं हो? तो जान इंजेक्शन नहीं बचाता है, इंजेक्शन तो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। निमित मात्रेन भव सव्यसाची, अर्जुन तुम नहीं मार रहे हो, मैं मार रहा हूं, तुम्हें सिर्फ मैंने निमित समझा है ताकि मैं तुम्हारा यश बढ़ा सकूं। इसलिए डॉक्टर का यश बढ़ाने के लिए उसके पुण्य कर्म के फल के अनुसार भगवान उसको जिम्मेदारी देते हैं, तुम लगाओ इंजेक्शन। वो लगाता है, बच जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप भगवान समान है, डॉक्टर भगवान समान है, भगवान नहीं है, बनाने वाला भगवान है। तो इसी प्रकार से वो जो राम कथा सुनकर के मलूक दास जी को लगा राम कैसे हो सकते हैं, बड़े ही भौतिकवादी थे, राम कैसे सबको भिक्षा खाना देने वाले हो गए। अपने घर जाके कहते हैं तुम्हारे सत्संग में एक बाबा जी झूठ भी बोलते हैं, कहते राम करता है, अरे मैं काम करता हूँ, नौकरी पे जाता हूँ, अपनी अटेंडेंस लगाता हूँ, शाम तक नौकरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर मेट्रो में बैठता हूँ बिना कुछ खाए पिए, रात को 8 बजे लौटता हूँ, तब महीने के एंड में तनख्वाह आती है। तुम्हारे बाबा जी कहते हैं राम करते हैं, ऐसे कैसे राम करते, राम तो आराम करते हैं, हम तो यहाँ काम करते हैं, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। जब ऐसे बोला तो उनकी पत्नी हंसने लगी, कहती अरे आपको राम पे भरोसा नहीं है अभी, देखिएगा एक दिन आपको भगवान राम कुछ ऐसी परिस्थिति बनाएंगे, आपको अपने आप कुछ होगा। क्या क्या परिस्थिति बनाएंगे? वो कह रहे थे कि खाना भी हम खाते हैं, एक एक तिनके तिनके पे ऊपर वाले ने नाम लिखा है, आज कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। बोले देखता हूं कल तेरा ऊपर वाला कैसे खिलाता है, कल कोई व्रत नहीं है, कल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, मैं कल खाऊंगा ही नहीं। मलूक ने कहा मैं कल कुछ खाऊंगा ही नहीं, फिर देखता हूं तुम्हारे राम मुझे खिला पाते हैं कि नहीं खिला। तो सुबह सुबह से ही 8 बजे पत्नी पच्चे छप लग गए, पिताजी खाइए ना, पिताजी खाइए ना, आपने सुबह से कुछ खाया? कहा ना आज तो खिलाएगा तो राम खिलाएगा, अपने हाथ से तो ये आदमी नहीं खाएगा, खिलाए राम देखें जरा कैसे पेट भरता है, अभी चैलेंज करने लग गए। दोपहर होने लगी, पत्नी बोलती बहुत देर हो गई, अब ये ड्रामा छोड़ो, देखो भगवान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बड़े बड़े देवी देवता 33 करोड़, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, ये सब भगवान के भक्त हैं, काहे को भगवान राम और कृष्ण को चैलेंज करते हो, बैठ जाओ। नहीं माने, बोले तुम मेरे पीछे पड़ती हो ज्यादा ना तो मैं घर छोड़ के जाता हूँ, घर छोड़ के चले गए। बोले लौटूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, अपने हाथ से कमाऊंगा नहीं, अपने हाथ से एक निवाला मुंह में नहीं डालूंगा, देखो तुम्हारे राम कैसे पेट भरते हैं, ऐसा चैलेंज कर दिया। बोला ना बिना काम किए मिलता है, देखूं जरा बिना काम के कैसे खिलाते हैं, चैलेंज कर दिया। शाम को रात हो गई, रात को गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जंगल जानवरों का डर लगा तो पेड़ के ऊपर बैठ के रात गुजारने का नियम सोच लिया, पूरी रात बैठूंगा और सुबह उठते ही बाबा जी के पास जाऊंगा, उस प्रवक्ता के पास, कहूंगा बड़े बड़े भाषण देता था, कहां है तेरा राम, मैं कल भूखा रहा, एक रुपया नहीं, एक अन्न का दाना नहीं खिलाया तेरे राम ने, क्योंकि मैंने खुद खाया नहीं, मैंने नहीं किया तो नहीं खिलाया उसने। तो इस तरह से वो बैठे थे और पास ही के गांव में एक शादी हुई थी, शादी के होने के बाद लोग शादी की विदाई के बाद अपना प्रसाद वसाद लड्डू पूड़ी लेकर सब लोग अपने अपने शादी से विदा ले लेते हैं, रिश्तेदार जाते हैं ना शादी के बाद, आप लोग उनको गिफ्ट लड्डू पूड़ी पैक करके देते हैं, ले जाइए रस्ते के लिए, तो दिया था। तो 10-12 लोग जा रहे थे, इतने में पता चला गाँव में शादी हुई है तो डाकू आ गए। अब ये सारे लोग उसी पेड़ के नीचे बैठ करके रेस्ट कर रहे थे, ये सारा प्रसाद वसाद वहां रखा था, मिठाई नमकीन पूड़ी कचौड़ी दूध दही, और इतने में सुनाई दिया गांव में डाका पड़ गया है, डाकू आ गए। ये आदमी लोग इतना घबरा गए डाकुओं के नाम से कि मार देंगे, ये प्रसाद वहीं छोड़ करके भाग गए। डाकू भी गांव से लूट मार करके जब इधर की ओर आ रहे थे तो खुशबू आने लगी, बहुत सारा प्रसाद रखा था गर्मा गर्म। तो डाकुओं में से एक कहता है सरदार बहुत भूख लगी है, खा ले यहाँ पर खाना रखा है। तो डाकुओं का सरदार बोला कि देखो मुझे लगता है इसमें कोई चाल है, क्योंकि अभी हमने डाका मारा है, पुलिस वालों ने जानबूझ करके ये यहाँ पर खाना रखा है कि हम खाएं, इसमें जहर होगा और हम मर जाएं, फिर हमें बंदी बना ले, या बेहोशी की दवाई है। कहा तो दूसरा बोलता है अगर सरदार ऐसी बात है तो अगर पुलिस वालों का ये काम है तो पुलिस वाला भी होगा आसपास। तो कहा ढूंढो, तो 7-8 डाकू थे, सब अपने अपने घोड़े से बांध दिए पेड़ पे और ढूंढने लगे कहाँ है कहाँ है। तो मिला नहीं, कहा सरदार नहीं है, सरदार नहीं है। एक बोला सरदार मिल गया, ये पेड़ पर बैठा है, यही पुलिस का आदमी है, नीचे उतारो। तो वो बोला मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। कहा सारे यही बोलते हैं, नीचे उतर जा। नीचे उतारा और बोले कि तुमने ये हमारे लिए रखा है खाना? कहा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं रखा, ये सब तो राम का रखा हो, मैंने कुछ नहीं रखा। कहा कि नहीं नहीं भाई तुमने ही रखा है, हमें मारना चाहते हो, चलो खाओ इसको। कहा नहीं मैंने प्रण लिया है सुबह सूर्य उदय होने तक कुछ नहीं खाऊंगा। कहा अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगे, ज्यादा बनते हो, खाओ। दो हाथ लोगों ने, डाकुओं ने उनके हाथ पेड़ से बांध दिए और उसके बाद में दो ने मुंह ऐसे करके खोल दिया पूरा, ऐसे नाक में ऐसे करके, और मुंह में सरदार ने हलवा उठा उठा के, पूड़िया उठा उठा के, दूध उठा उठा के डाला। ओ मना करे नहीं खाऊंगा, करे खाना पड़ेगा, नहीं खाऊंगा खाना पड़ेगा, सारा प्रसाद खिला दिया। तो बोले सरदार ठीक है सब खाना देख लिया, ये जिंदा है, हम लोग खाते हैं। सबने खाया, उसके हाथ खोल दिए, बोले तू जा। अब बेचारे अपना उदास मुंह लेके घर वापिस आए। पत्नी बोलती क्या हुआ, पूरी रात भूखे रहे, आ गई अकल ठिकाने? कहा भूखा रह जाता तो अकल ठिकाने नहीं आती, भगवान ने खिला करके अकल ठिकाने लगा दी। तो भगवान ने अकल लगा दी। तब फिर वो मलूक दास भगवान को ढूंढने निकल गए, उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया और बोले अब भगवान को, अभी तो सिर्फ समझ लिया है कि भगवान है, लेकिन कितना दर्जे का हमारे जीवन में है इसको ढूंढने के लिए अब उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। इसलिए इस श्लोक में आता है यात्रा, यात्रा च अपिते, यात्रा है ये जीवन की। इस शरीर में जब तक हम हैं, बचपन से जवानी, जवानी से अधेड़ अवस्था, अधेड़ से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मृत्यु, तो ये जो यात्रा है इसमें छह प्रकार के बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। इस बदलाव में आत्मा नहीं बदलती, हम बदलते हैं। तो अपनी यात्रा उन्होंने प्रारंभ करी भगवान को जानने के लिए, और भगवान को जानने से क्या हुआ, वो इस लाइन को लिख पाए अपने जीवन में, क्या कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं लिखे सबके दाता राम। तो राम उस पर इतना भरोसा होना चाहिए। नियत कर्म करु तो या, अपना नियम कर्म तो करो, लेकिन भूल जाओ उसके बाद कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दुखी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, दुखी हो तो वो पागल व्यक्ति है। दुख क्यों हो रहा है भाई, जब राम ने सब कुछ निश्चित किया है तो तुम्हारे दुखी होने का क्या है। भिखारी बनाएगा तो वो, राजा बनाएगा तो वो। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने नियत कर्म अपने स्वभाव के अनुसार करने चाहिए। हरे कृष्ण।